ये सृष्टि और संहार की प्रक्रिया में आपने देखा था कि सृष्टि की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो परमाणु से होती है। दो परमाणुओं करके संयोग होने से द्व्यनुक की उत्पत्ति होती है, तीन द्व्यनुकों की उत्पत्ति होने से त्रिनुक की उत्पत्ति होती है, चार त्रिनुक के संयोग होने से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आपने देखा और संहार में भी देखा कि जब महेश्वर की संजीर्षा होती है तो फिर क्या होता है कि परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, फिर उस क्रिया उत्पन्न होने से दो परमाणुओं का विभाग होता है और परमाणुओं के विभाग होने से जो है वह जो धनुक का संयोग है उसका नाश होता है, फिर धनुक का नाश हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों में ही, सृष्टि में और संहार में, दोनों में ही परमाणु की बात आई थी। तो न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि जो होती है उसका जो समवायी कारण है, उसका समवायी कारण माने मूल कारण जो है, पहला कारण जो है, असली कारण जो है वह परमाणु होता है। तो परमाणु के आधार पर ही जो है इनका पूरा का पूरा दर्शन टिका हुआ है, पूरा का पूरा जो है इनका कह लीजिए कि विज्ञान टिका हुआ है सृष्टि और संहार का। तो उस परमाणु के सद्भाव में क्या प्रमाण है, ये प्रश्न किया जा रहा है। परमाणु के सद्भाव में प्रमाण माने परमाणु होता है, परमाणु का अस्तित्व है, इसमें क्या प्रमाण है। कोई कहे कि नहीं जी हम परमाणु नहीं मानते हैं, परमाणु नहीं होता है, और जब तो फिर उसको कैसे समझाया जाएगा। तो आप तो जानते हैं कि जब परमाणु तो प्रत्यक्ष होता नहीं है, हैं इंद्रिय ग्राह्य होता नहीं है, तो जो इंद्रिय ग्राह्य है उसको तो हम प्रत्यक्ष से प्रमाण से सिद्ध कर देंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है और उसको सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे, फिर हम अनुमान प्रमाण की शरण में जाएंगे और अनुमान प्रमाण से उसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी परमाणु के सद्भाव में जब प्रमाण पूछा जा रहा है, पूछते हैं कि किम पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम, कि परमाणु के सद्भाव में क्या प्रमाण है। तो उच्यते, तो वहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है माने अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद जो है फिर आगे के पाठ में जाऊंगा। एक श्लोक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भी न्याय दर्शन पढ़ता है उसको ये श्लोक जरूर याद रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इस श्लोक को आप लोग भी लिख सकें तो लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे लिखाता हूँ। कलम खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और लिखिए कि जालांतर गते भानौ, जालांतर गते भानौ, जालांतर गते भानौ, जालांतर गते भानौ, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः। एक बार फिर मिला लीजिए, जालांतर गते भानौ, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः। अब आगे की पंक्ति लिखिए, तस्य षष्ठतमो भागः, तस्य षष्ठतमो भागः, तस्य षष्ठतमो भागः, तस्य षष्ठतमो भागः। फिर अगली लाइन लिखिए, परमाणु प्रकीर्तितः, परमाणु प्रकीर्तितः, परमाणु प्रकीर्तितः, परमाणु प्रकीर्तितः। माने परमाणु किसे कहते हैं, तो इस श्लोक में वो बताया गया। यद्यपि ये आपकी पुस्तक में नहीं है, फिर भी ये आपको याद रहना चाहिए, परीक्षा समय इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, जाला आप मिला लीजिए लिखे हुए को, जालांतर गते भानौ, यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः, तस्य षष्ठतमो भागः, परमाणु प्रकीर्तितः। अब इसका मतलब समझिए कि जाल अंतर्गते भानौ, भानु कहते हैं सूर्य को, हैं तो जब मतलब छत के किसी सूक्ष्म छिद्र में से सूर्य की रोशनी आती है, आजकल तो चलो पक्का मकान बन गया है, लेकिन पुराने जमाने में या अभी भी गांव में तो होते हैं कि ये खपरा का मकान होता है या फूस का मकान होता है, तो उसमें कहीं बड़े छोटे छेद से जो है ना सूरज की जो रोशनी आती रहती है घर के अंदर, या अभी भी रोशनदान तो होता है तो रोशनदान वाले छेद से जो सूरज की रोशनी घर में प्रवेश करती है, उसको आप जब गौर से देखेंगे ना तो उस रोशनी में आपको बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म जो है ना छोटा छोटा जो है आपको कण दिखाई देता होगा उड़ता हुआ, ठीक है। तो वो जो सूक्ष्म छिद्र से जो वो रोशनी आती है भानु की सूर्य की, तो उसी को कहा जाता है जालांतर गते भानु, माने जाल के अंतर्गत जो भानु रहता है माने सूर्य की रोशनी रहती है, और ये जो जाल है जाला है ना, इस जाला को जो है हिंदी में कुछ कहते हैं जंगला, हाँ ठीक जंगला कहते हैं। तो वो जो जंगले में से जो है ना सूर्य की रोशनी जो सूर्य की जो किरण आती रहती है खुले जंगले में से, तो उस सूर्य के किरण में अत्यंत सूक्ष्म जो है धूलिकण दिख पड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो धूलिकण है उसी के लिए कहा कि यत सूक्ष्मम दृश्यते राजा, माने जंगले के अंतर्गत जो सूर्य की रोशनी है उस सूर्य की रोशनी में जो सूक्ष्म रज दिखाई देता है, सूक्ष्म धूल के कण दिखाई देते हैं, उस एक कण को तस्य षष्ठतमो भाग, उस एक कण का जो छठवां हिस्सा है, उस एक सबसे जो छोटा कण है उसको का छह टुकड़े कर दो, उसमें से जो छठवां हिस्सा होगा वही परमाणु प्रकृति का, उसी को परमाणु कहा जाता है। तो जालांतर्गत भानु में दिखने वाला जो अत्यंत सूक्ष्म धूलिकण है, उस धूलिकण का जो छठा हिस्सा होगा, छठा टुकड़ा होगा, वही टुकड़ा जो है परमाणु कहलाता है, माने उतना ही सूक्ष्म जो है परमाणु होता है। तो इस तरह से परमाणु कितना बड़ा होता है उसके बारे में इस श्लोक में आपको बताया गया। अब चलिए ग्रंथ की पंक्ति में चलते हैं, आगे कहते हैं उच्चते के बाद कि यत इदम जाले, जाले मतलब वही जो जंगला मैंने कहा था कि जंगला में सूर्य मरीचिस्थम सर्वतः सूक्ष्मतमम रजह उपलब्ध थे, कहा कि जंगले में से जो सूर्य की मरीची आती है, मरीची मतलब किरण, सूर्य की जो किरण आती है उस किरण में रहने वाला जो सर्वतः सूक्ष्मतमम रजह, जो सबसे छोटा जो कण है धूलिकण है उपलब्ध थे उपलब्ध होता है, वह जो धूलिकण है वह धूलिकण क्या है कि तत् स्वल्प परिमाण द्रव्यारम्भम द्रव्यारब्धम, वह जो धूलिकण है सबसे छोटा दिखने वाला धूलिकण वह भी तो बना ही है ना किसी से, किसी अच्छा जो बना है उसका परिमाण बड़ा होता है, और जिससे बना है उसका परिमाण जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब जैसे एक अभी उदाहरण लीजिए, आप रोटी पकाते हैं, रोटी किससे बनती है, आटे से बनती है, तो आटे का जो परिमाण है वह रोटी के परिमाण से क्या होता है, स्वल्प होता है, छोटा 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 टुकड़ा होता है, उसको जोड़ने से रोटी बनती है। तो एक सामान्य सी ये बात है कि जो बनने वाली चीज है वह जो बनती है जिन चीजों से वो अपने से छोटे परिमाण वाली चीजों से बनती है। देखते हैं ना एक एक ईंट खड़ा करके जो है ना बड़ा का बड़ा महल तैयार हो जाता है, तो बनने वाला कौन है, महल, वो अपने से छोटे वाले परिमाण की जो ईंटें हैं उन ईंटों से जो है ना वो बनता है। तो जो भी चीजें हैं संसार में वो सब की सब अपने से अपेक्षाकृत अल्प परिमाण वाले जो द्रव्य हैं उनसे आरब्ध होते हैं, आरब्ध होते हैं माने प्रारब्ध होते हैं, उनका प्रारंभ जो होता है उनका जो बनना होता है वो अपने से छोटे परिमाण के द्वारा ही बनना होता। तो ये कहा कि ये जो मतलब जंगले में सूर्य के मरीची में रहने वाला जो सबसे सूक्ष्मतम रज है वह रज अपने से स्वल्प परिमाण वाला जो द्रव्य है उससे आरब्ध है, माने उससे वह बना हुआ है। क्यों, तो कहा कि हेतु क्या है इस अनुमान में, तो कहा कि कार्य द्रव्यत्वात्, क्योंकि वह जो सूक्ष्मतम रज है वह कार्य द्रव्य है, और जो कार्य द्रव्य होता है चाहे वह कोई भी हो वह अपने से सूक्ष्म अपने से स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से ही बना होता है। आरब्ध का अर्थ यहाँ पर बना होना समझिए, जो बना हुआ हो उसको हम आरब्ध कहते हैं। स्वल्प परिमाण द्रव्य आरब्धम माने अपने अपेक्षा अल्प परिमाण वाले द्रव्य से बना हुआ। तो यह जो सूक्ष्मतम रज है उस जाल सूर्य मरीचिस्थ सूक्ष्मतम रज है वह अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से आरब्ध है माने बना हुआ है, क्योंकि यह जो सूक्ष्मतम रज है वो कार्य द्रव्य है, और जो कार्य द्रव्य होता है वह अपने से स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से ही बना होता है। उदाहरण में दिया घटवत, जैसे घट है तो घट जो है अपने से अल्प परिमाण वाला जो कपाल है उस कपाल से जो है बना हुआ होता है, क्योंकि वह घट भी जो है वह कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्य को याद दिला दूं, द्रव्य दो प्रकार का होता है, नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य। जो अनित्य द्रव्य है उसी को कार्य द्रव्य कहा जाता है। तो केवल परमाणु रूप जो द्रव्य है वही नित्य होता है, और बाकी जो पृथ्वी आदि रूप जो द्रव्य है वह कार्य द्रव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सिद्ध किया गया इस अनुमान के द्वारा कि वह जो सूक्ष्मतम रज उपलब्ध होता है सूर्य की किरण में वह मतलब कार्य, चूंकि कार्य द्रव्य है इसीलिए अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से वह बना हुआ है घड़े की तरह। तच्च द्रव्यम कार्यम एवं, वह जो द्रव्य है वह कार्य द्रव्य ही है। कौन? वो सूक्ष्मतम रज जो है वह कार्य द्रव्य ही है, और महद्रव्यारंभकस्य कार्यत्व निर्माता, नहीं थोड़ा मैंने गड़बड़ किया, तच्च द्रव्यम से पकड़ लीजिए, वह जो स्वल्प परिमाण वाला जो द्रव्य है ना जिससे वह सूक्ष्मतम रज बना है उसको पकड़ना है। तच्च द्रव्यम माने वह जो स्वल्प परिमाण वाला द्रव्य है वह द्रव्य भी कार्यम एवं, वह भी कार्य द्रव्य ही है। क्यों? क्योंकि वह महत् द्रव्य आरंभ कस्य, वह महत् द्रव्य का आरंभ किया है माने अपने से बृहत परिमाण वाले द्रव्य का वह जो है आरंभक है, और जो अपने से बृहत द्रव्य का आरंभक होता है उसमें कार्यत्व नियमात वह कार्य द्रव्य ही होता है। माने ये हुआ कि जो अपने से माने छोटा जो है ना अपने से बड़े का निर्माण करता है, ठीक, और वह जो छोटा जो बड़े से निर्माण करेगा वह छोटा हमेशा क्या कहलाएगा? तो द्रव्य कार्य ही कहलाएगा, या कार्य द्रव्य ही कहलाएगा। तो तच्च द्रव्यम कार्यम एवं, वह जो स्वल्प परिमाण वाला द्रव्य है वह कार्य द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपने से महत द्रव्य का आरंभ किया है, अपने से महत द्रव्य को उसने बनाया है। तदेवम द्वनुकाख्यम द्रव्यम सिद्धम, और इस प्रकार से जो है द्वनुकाख्य द्रव्य की सिद्धि हुई। कैसे द्वनुकाख्य द्रव्य की सिद्धि हुई? क्योंकि वो जो द्वनुक जो है वह महत परिमाण वाला द्रव्य है, और महत परिमाण वाला द्रव्य और कार्य द्रव्य है, और जो कार्य द्रव्य होता है द्वनुक वह क्या होगा? स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से बना होगा। तो द्वनुक का स्वल्प परिमाण वाला द्रव्य कौन है? तो परमाणु है। तो उस परमाणु के द्वारा वह द्वनुक जो है वह उत्पन्न हुआ है। अब द्वनुक जब सिद्धि हो गई तो तदपि स्वल्प परिमाण समवाय कारणारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् घटवत्। आप याद करिए, मैंने कभी कहा था कि ये त्रिनुक जो होता है उसका प्रत्यक्ष होता है, त्रिनुक से पहले वाले का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो वह जो सूक्ष्मतम रज आपको दिखाई देगा सूर्य की किरण में वो क्या होगा? वह त्रिनुक ही होगा। उस वह जो त्रिनुक है अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से बना होगा, मतलब द्वनुक से बना होगा। क्यों? क्योंकि वह कार्य द्रव्य है त्रिनुक, जो भी कार्य द्रव्य होता है वह अपने से स्वल्प परिमाण वाले से बना होता है। तो त्रिनुक का स्वल्प परिमाण वाला द्रव्य हो जाएगा द्वनुक। तो इस तरह से द्वनुक की सिद्धि हुई। अब फिर द्वनुक में भी अनुमान करिए कि द्वनुक भी जो है वह भी कार्य द्रव्य है, वह भी अपने से स्वल्प परिमाण वाले से बना होगा। तो उसका स्वल्प परिमाण वाला द्वनुक का कौन होता है? तो उसका जो समवायी कारण है उससे वह बना होता है। ये क्योंकि ये भी कार्य द्रव्य है, घट की तरह जो है ये कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य है द्वनुक, तो अपने से स्वल्प परिमाण वाले से बना होगा। उसका स्वल्प परिमाण वाला कौन है? समवायी कारण। वह समवायी कारण जो है वह क्या है? वही तो परमाणु है। वही का कि यस्तु द्वनुकारंभकः, जो द्वनुक का आरंभक है, जनक को बनाने वाला है, स एव परमाणु, वही परमाणु है, स च अनारब्ध एव, और वह जो परमाणु है वह अनारब्ध होता है अर्थात नित्य होता है। परमाणु किसी से नहीं बनता है बल्कि परमाणु से ही द्वनुक बनता है, और द्वनुक से ही त्रणुक बनता है, त्रणुक से ही चतुर्णुक बनता है, चतुर्णुक से ही पंचानुक बनता है, और इस तरह से महती पृथ्वी, महान जल, महान तेज, इन सबों का आरंभ होता है। तो इस तरह से अनुमान के द्वारा जो है परमाणु की सिद्धि की गई। त्रणुक को पहले पकड़ा गया क्योंकि त्रणुक तो प्रत्यक्ष योग्य है ना, तो त्रणुक को पकड़ करके त्रणुक जो है अपने से छोटे आगे परिमाण वाले से बना तो इससे सिद्ध हो गया द्वनुक, और द्वनुक भी अपने से छोटे परिमाण वाले से बना इससे सिद्ध हो गया परमाणु। तो इस प्रकार से परमाणु को सिद्ध करके आगे का पाठ जो है हम आगे के लिए रखते हैं, आज यहीं पर ब्रेक करते हैं।